نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں جس چیز پر ہم لاسٹ سیشن میں پہنچے تھے وہ ہے آپ کا تکلم. تکلم کہتے ہیں کلام کرنا, بات کرنا. تو ہم سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چیت کرنے کے انداز میں کیا کچھ تھا جو آج میں اور آپ لا سکتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ کلام بندے کا ترجمان ہوتا ہے. ایک بندہ خاموش بیٹھا آپ کے سامنے, بندہ یا بندی, اس کا آپ کے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ اس کے پہننے اوڑھنے, اس کے کپڑوں سے, اس کی شکل و صورت سے, ہو سکتا ہے اس کے بیٹھنے کے انداز سے بھی آپ کو کچھ انداز ہو. لیکن عموماً جب تک کوئی بولتا نہیں ہے نا تو ہمارا اس کے اس بارے میں کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھے کپڑے پہننے ہوئے, ڈیسنٹ کپڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت ڈیسنٹ ہے. شکل و صورت اچھی ہوگی تو ہم کہیں گے بہت ڈیلیکیٹ ہے. لیکن جو ہی کوئی بولتا ہے تو اس کے بعد ہمارا 80% اس بندے کے بارے میں کانسیپٹ بدل جاتا ہے. آپ امیجن کریں, کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, مرد ہی ہے, کوئی مثال ہے, کہیں بھی ایئرپورٹ پہ آپ گئے ہیں, وہاں کوئی بیٹھا ہے اور ایک دم وہ بولے تو آواز اس کی عورتوں جیسی ہو, ہمارا ایک دم چینج ہو جائے گا اس کے بارے میں کانسیپٹ. ایک عورت ہے, وہ بیٹھی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ڈیلیکیٹ ہے, لیکن بولے تو آواز میں مردوں والا بھاری پن ہو, یا چیخ کے بولے, وہ جڈ لہجے میں بولے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگتا. تو جس طرح ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ انسان کا لباس, اس کا پہننا اوڑھنا, اس کا ایک قسم کا تعارف ہوتا ہے, اسی طرح دوسری چیز کلام ہوتی ہے. اور ابھی تک جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے دیکھی کہ آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے, اہم باتوں کو دہرایا کرتے تھے, جملے بڑے نپے تلے ہوتے تھے. اپنے لفظوں میں میں کہوں گی کہ آپ کی اگر ایڈیٹنگ کسی کو کرنی پڑے تو بہت آسانی سے کر دے, کیونکہ اس میں فالتو لفظ ہی نہیں تھے. آپ کے لہجے میں اتار چڑھاؤ تھا, سپارٹ ہی نہیں بولتے تھے کہ لوگ سو ہی جائیں, بالکل سیدھا سا نہیں بولتے تھے, آہستہ نہیں بولتے تھے کہ سننے والوں کو سمجھ نہ آئے. اور صحابہ کو کبھی بھی اللہ کے نبی کو یہ کہنا نہیں پڑا تھا کہ دہرا دیں. ہاں کبھی کہنا پڑتا تو اس پہ رائنا کا لفظ دیا گیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بہت سارے کام تھے, ذمہ داریاں بھی تھیں. اس کے باوجود بھی جب آپ دوسروں سے بات کرتے تو آپ کی آواز میں سکون ہوتا, پریشان نہیں ہوتے. بڑے سے بڑا مسئلہ جب لوگ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں, اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے آپ سے ڈسکس نہ کیا ہوتا ہمیں وہ بہت بڑا لگتا, لیکن جو ہی ہم آپ سے بات کرتے آپ اس کا اتنا آسان حل پیش کرتے کہ ہم حیران رہ جاتے. یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. آپ نے کبھی وکالت پڑھی ہو نا, لائرز جو ہوتے ہیں, اصل میں ان کے اور عام لوگوں کے بیچ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لائرز وہ نکتے نکالتے ہیں, کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہوتا ہے بات میں سے بات نکالنا, جرا کرنی, تعدیل کرنی, جس پہ دوسروں کی توجہ بھی نہیں جاتی. تو کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں کوئی بات کرتا تو اس میں بھی بڑی اچھی بات کرتے, دین کی بات ہوتی اس پہ بھی بات کرتے, کھانے پینے کی باتیں بھی کرتے. تو اس سے ایک دین کا ایک وہ ایک جھوٹا سا تصور ہے نا کہ مولوی صاحب صرف ہر گھر میں جا کے کل کھلا ہی پڑھتے رہتے ہوں گے, یہ درست نہیں ہے. دیندار کھاتے پیتے بولتے جاگتے مشورے کرتے, کسی کا دکھ سنتے, کسی کا درد جانتے, کسی کو کوئی اچھی بات کہتے, یہ کہتے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ پبلک ڈیل کریں گے, پبلکلی ڈیل کریں گے. لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسی چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. قریش مکہ کے ایک مہذب خاندان کا یہ ممتاز فرد قبیلہ بنو سعد کی فضاؤں میں عرب کی فصیح ترین, فصیح کہتے ہیں سب سے زیادہ کلیئر, کرسٹل کلیئر, جیسے کہ زبان سے آراستہ تو تھا ہی, وہی کی لسان مبین نے حسن گفتار کو اور بھی سیقل کر دیا. ثقیل کہنا چاہیے یا سیقل, یعنی سیقل میں ان کے بہت ہی زیادہ آپ کی بات خوبصورت ہو گئی تھی. ابھی اتنے مشکل جملے کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو سعد میں گرو اپ ہوئے تھے تو وہ قبیلہ اپنی زبان کے ناطے سے بہت معروف تھا, وہاں سے آپ کی بیس بن گئی. اور جب اوپر وہی آ گئی اقرا باسم ربک تو سونے پہ سہاگا, جس کو آپ کہیں گے نور علی نور. حق یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے, سب سے زیادہ اچھی عربی بولنے والے. حضور کے کلام کا جہاں ادبی معیار بہت بلند تھا وہاں اس میں عام فہم سادگی بھی تھی. پھر کمال یہ بھی کہ کوئی گھٹیا اور بازاری الفاظ استعمال میں نہیں لایا. اس کو ذرا رک کے سوچیے, ساتھ ساتھ محاسبہ, کیا میری زبان میں گھٹیا لفظ تو نہیں ہوتے؟ देखिए, एक लफ्ज होता है लफ्ज, बामानी लफ्ज को कलेमा कहते हैं। कलेमा एक पहली किस्म है लफ्ज की, बामानी लफ्ज। इसका ऑपोजिट एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं मोहमल, मोहमल। हाँ, से मोहमल कहते हैं बेमानी, बेइरादा, बेकार लफ्ज को। अभी आपको समझ आ जाएगी अगर नाम से नहीं समझ आई तो। रोटी छोटी खानी है, ये रोटी तो खा गई, समझ, ये छोटी क्या है, ये मोहमल है। अच्छा, कोई कुर्सी शुर्सी है घर में? ये कुर्सी तो समझ आ गई, ये शुर्सी क्या होती है? यकीन करें, आज आप जाकर अपने घर वालों से कहें कि एक दिन में आपके मोहम्मद लफ्ज ढूंढें, आपको हैरत होगी। लेकिन मजे की बात देखिए, कुरान में एक भी मोहम्मद नहीं है, और नबी सल्लम के अल्फाज में कोई एक्स्ट्रा लफ्ज नहीं होता था। अगर आप एक दूसरे को इजाजत दें तो आप देखिएगा, आपके ऊपर इतने बड़े बड़े इंकशाफात होंगे। और फिर घटिया लफ्ज, बाजारी लफ्ज, वल्गर टॉकिंग, ओए इधर आ, ओ बे इधर आ, ओ मोटू, ओ छोटू, ये घटिया लफ्ज होते हैं, अल्लाह के नबी नहीं बोलते थे। पर आप देखिए कि दूसरों को इज्जत देने वाले कभी भी कोई बेकार लफ्ज उनके बारे में नहीं बोल सकते, और ना कोई मस्नूई तर्ज की जुबान पसंद फरमाई। मस्नूई तर्ज क्या होता है? आर्टिफिशियल स्टाइल। क्या हाल है, ठीक है, आगे, कितना अजीब लगता है। और बाज लोगों का तो स्टाइल ही होता है, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं आप तोतली सी जुबान कर दें, इट्स फाइन, जरा बच्चे को बच्चा बन के दिखा दें, ठीक है। लेकिन बड़ों से बात करते हैं कभी भी तसन्नो नहीं करें। नबी सल्लम पसंद ही नहीं करते थे, फरमाया कि तकल्लुफ में है तकलीफ ज्यादा। तो सीधी सिंपल सी आवाज हो। अच्छा, आप इसको देखा करें तर्ज तखातुब में, दर्स देने के अंदाज में। अब मैं आपके साथ बोल रही हूँ ना, सीधी सीधी बोल रही हूँ, मैं आपसे कहूँ खतबा शुरू करो, और बाज लोग इस तरह रा लगा के नहमदुहू व नस्तईनुहू, यानी वो एकदम बैठा हुआ एकदम कहते हैं इनको क्या हो गया, या तो आवाज ऊंची हो जाएगी, या लय में बोलेंगे, या टोन में बोलेंगे, ये चीज पसंदीदा नहीं है। नबी सल्लम ने कभी ऐसी धुआंधार तकरीरें नहीं की थी। और बाज लोग तकरीर करेंगे, उनका मवाद इतना सा है लेकिन उसके शुरू और आखिर के साहब के लाख के, और उसमें कई किस्म की बातें होती हैं कि 2 घंटे की स्पीच में आप आधा घंटा काम की बात देखें तो निकलेगी। ये नबी सल्लम का स्टाइल नहीं था, सिंपल सीधी सीधी टू द पॉइंट जिसको आप कहेंगे। कहना चाहिए कि हजूर ने अपनी दावत और अपने मिशन की जरूरियात से खुद अपनी एक जुबान पैदा फरमाई थी। बड़ी खूबसूरत बात है ये। जब आपका एक मिशन होता है ना, तो आपको अल्लाह खुद सिखाता है इस वक्त की जरूरत क्या है। मैंने किसी से नहीं सीखने। आप देखिए, लोग कहते हैं किससे सीखें। बाद लोगों को मैं देखे दूसरों के लेक्चर्स को लफ्ज ब लफ्ज लिखते हैं और जाकर डिलीवर करते हैं, कभी हक की नहीं अदा कर सकते आप, वो तो ऐसे ही खाया और उगल दिया। हजम करना पड़ता है, आपकी अपनी एक सोच होती है, आपके अंदर एक दर्द होगा ना, खूबसूरत लफ्ज होंगे। कई लोग ये बात पूछते हैं एक दूसरे से कि इतने खूबसूरत लफ्ज कहाँ से आते हैं, तो मैं कहती हूँ खूबसूरत जज्बों से आते हैं। किसी को नहीं पता होता पहले मेरे सामने, तो आज तक कभी, आप अभी भी गवाह हैं कि मेरे सामने आपने कभी कोई डायरी किताब लिखी नहीं देखी होगी, पूरे दौरे कुरान छोड़े अभी भी देख ले, जो कुरान आपके सामने होता था सादा वो मेरे सामने, अभी जब बुक आपके, ये मेरी स्क्रीन पे खुली हुई है और कुछ भी नहीं है। मैं किसी पढ़ी हुई चीज को पढ़ ही नहीं सकती, बल्कि मेरी जुबान थिड़कने लगती है। कभी पढ़ के सुनाती है ना बीच में कह करके, ये कोटेशन है, तो 10 गलतियां निकलेंगी। पढ़ी हुई चीज नहीं पढ़ी जाती। अभी भी इस वक्त बुक से पढ़ रही हूँ कि आपकी उर्दू ठीक हो जाए, अदरवाइज ये बातें मैं अपने लफ्जों में अगर बयान करूँ तो मुझे ज्यादा इजी लगेंगी। लेकिन इस बुक का फायदा क्या होगा? नंबर एक, आपको कम लिखना पड़ेगा और आप सोचेंगे ज्यादा। दूसरी बात, आपकी उर्दू अच्छी होगी। आप में से जिसकी उर्दू अच्छी नहीं, वो ये बुक जरूर ले। और आपको मैं उर्दू में बोल रही हूँ, और जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसको नोश्क में लिखें, ऊपर इंग्लिश में लिखें। आप देखिए, उर्दू सीखनी है, बेस्ट तरीका उर्दू किताबें पढ़ें, अरबी सीखनी अरबी बुक्स पढ़ लें, इंग्लिश सीखनी और इंग्लिश सीखें। वरना हम क्या कहते हैं, कोर्स करना है पर बुक नहीं पढ़नी, तो ये कभी नहीं होगा। तो ये एक गैर महसूस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी उर्दू भी इससे इंशाल्लाह अच्छी होती जाएगी। फिर इसके बाद एक असलूबे बयान था, यानी असलूबे बयान कहते हैं स्टाइल, या एक अपना स्टाइल था आपका। चुनाचे हजूर के एक कॉल, अल हर्बु खुदा, हर्बु खुदा का मानी क्या कि जंग तो धोखा देने का नाम है। हर्ब कहते हैं जंग को, खुदा कहते हैं धोखे को। ये वही है जो सूरत बकरा में शुरू में मुनाफिकों की आदत में आते हैं ना, युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, तो खुदा के जंग में तो धोखे दिए ही जाते हैं। अल हर्ब खुदा पर बहस करते हुए सालब का कहना था, ये एक शख्स है जिनका नाम है, हिया लुगतुन नबी, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूस जुबान थी। बेशुमार इस्तलाहात बनाए, टर्मिनोलॉजीज, यानी जैसे हर जुबान के कुछ खास लफ्ज होते हैं ना, वो तरकीब पैदा की, तशबीहें और तमसीले वजा की, खिताबत का नया अंदाज निकाला, और बहुत से मुरव्विज, यानी वो जिनका रिवाज था, अल्फाज और असलूब को मतरूक किया, यानी अरब लोग जिस स्टाइल में बात करते थे नबी सल्लम ने उससे हटाकर दूसरी चीजों को प्रमोट किया। ایک مرتبہ بنو فہد کے لوگ آئے تو گفتگو ہوتی رہی، جس کے دوران میں آنے والوں نے تعجب سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی مقام پر پرورش پائی، پھر یہ کیا بات ہے؟ کیا آپ ایسی عربی میں بات کرتے ہیں کہ جس کی لطافتوں کو ہم میں سے اکثر نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھ رہے ہیں، یعنی ہم سب ایک ہیں، لیکن آپ کی بات ہم سے فرق کی ہوتی ہے؟ فرمایا، اور خوب فرمایا، ان اللہ عز و جل ادبنی فاحسن ادبی ونشأت فی بنی سعد ابن بکر، کہتے ہیں کہ میری لسانی تربیت خود اللہ عز و جل نے فرمائی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور میرے ذوق ادب کو خوش خوش اتر بنا دیا، یعنی خوبصورت بنا دیا، اور میں نے قبیلہ سعد میں بھی تو پرورش پائی ہے نا. نشہ کہتے ہیں اٹھنے کو، نشو نما والا لفظ پیسی سے، تو گویا کہ میں نے وہاں کی فصاحت آموز فضا میں پرورش پائی ہے. ایک موقع پر ایک ملاقاتی سے بات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق تعجب سے سن رہے تھے، پوچھا، اس شخص نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے وضاحت کی. اس پر جناب صدیق کہنے لگے، میں عرب میں گھوما پھرا ہوں اور فسخہ عرب کا کلام سنا، لیکن آپ سے بڑھ کر کلام میں فصیح کسی اور سے نہیں سنا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ فصاحت میں ہم سب سے بالا تر ہیں، حالانکہ آپ ہم سے کبھی الگ نہیں ہو گئے. اچھا، یہاں چھوٹی سی بات کہوں کہ ہمارے یہاں عموماً کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا شخص نا زیادہ پڑھا ہوا، اسکول گیا، پھر کالج گیا، پھر یونیورسٹی گیا، پھر اس کو تو زیادہ اچھی بات کرنی آئے گی، ہم تو اسکول سے آگے بھی نہیں کہیں گے. مثال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کالج یونیورسٹی چھوڑیں اسکول بھی نہیں کبھی گئے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے ان کو کس طریقے سے خوبصورت لفظوں کا اختیار کرنا سکھایا. تو جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کتنے فصیح کیوں، آپ اتنا اچھا کیسے بول لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، کانت لغت اسماعیل قد درست فجعنی بها جبریل ففتنیها، میری زبان اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے جسے میں نے خاص طور سے سیکھا، اسے جبرائیل مجھ تک لائے اور میرے ذہن نشین کرا دی. ساری بات کا خلاصہ کیا، جن کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چننا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو خوبصورت لفظ سکھا دیتا ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ تم خوبصورت خیالات پیدا کرو، الفاظ خود پیدا ہو جائیں گے. آپ بتائیں کہ ایک بچے سے آپ کو جب پیار ہوتا ہے تو کوئی سکھاتا ہے کہ اس کے لاڈ کرو، میرا گڈو، میرا پپو، میرا ننا، میرا مٹو، میرا گگو، کیوں بولتے ہیں؟ اندر جذبے ہیں نا محبت کے، تو وہ لڈو شڈو اس کو آپ کہتے رہتے ہیں، یہ شڈو پھر آ گئے مومل، کہتے ہیں نا، پیار ہوتا ہے نا. اور جب ہم کسی کو غصے میں ڈانٹتے ہیں تو کوئی ہمیں سکھاتا ہے کیا کیا گالی دینی ہے یا کیا کیا بولنا ہے، پھر وہ نان اسٹاپ بولتے ہیں، تو آپ مان لیجئے کہ ذہن، دل جو ہے نا، یہاں سے الفاظ پھوٹتے ہیں. تو جب دل میں سوچیں اچھی ہیں اور درد ہے، تو درد والے جملے خود ہی نکل آئیں گے. اور اگر کوئی آپ کی مزاح کی عادت ہے، اللہ خود بہت ایسا مزاح آپ کی زبان پہ لے آتا ہے، آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ بات اس وقت کریں گے. مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معمولی عربی نہ تھی، بلکہ خاص پیغمبرانہ زبان تھی جس کا جوڑ اسماعیلی زبان سے ملتا تھا، اور جبرائیل جس زبان میں قرآن لاتے تھے وہ بھی وہی پیغمبرانہ زبان تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ امر سامنے رہنا چاہیے کہ اکابر، یعنی بڑے لوگ، اکابر تاریخ خصوصاً انبیاء، جو ایک مشن لے کر ماحول سے کشمکش کرتے ہیں اور ان میں ہر آن سچے جذبات کی موجیں اٹھتی ہیں، وہ بات کرتے ہیں، تو اس میں مقصد کی عظمت معنوی گہرائی پیدا کرتی ہے، مخلصانہ جذبے سے ادبی چاشنی دیتے ہیں اور کردار کی بلندی سے پاکیزہ بناتی ہے. کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو اللہ نے ایک بہت بڑا مشن دیا ہوتا ہے اور ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور حیرت کی بات ہے، دنیا میں جو شخص جتنی اچھی بات لے کر اٹھا اتنی اس کی مخالفت زیادہ ہوئی. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کو ایک مشن دیا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان سب نے معاشرے کی خیر خواہی کی، ان کے لیے درد پیدا کیا. اور انسانی نسل میں اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہستیاں وہ ہیں جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ساری تاریخ میں یہی لوگ سب سے زیادہ غیر اہم رہے. یہ ریئلٹی ہے. بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے واقعات تاریخ نے مکمل طور پر ضبط کیے، لیکن آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کی پوری تاریخ لکھی بھی مل جائے آپ کو. ارسطو نام کا ایک شخص حضرت موسیٰ کے 1000 برس بعد پیدا ہوا اور اس کو موسیٰ کا نام تک نہیں پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اکثر انبیاء کو قوموں نے رد کر دیا، ان کے گھروں کو اجاڑا، ان کو معاشروں میں بے قیمت کیا، ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اتنے اہم ہوتے ہوئے بھی غیر اہم ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی خوبیوں کے مالک انبیاء کرام کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اس کی وجہ اپنی مخاطب قوموں کی روش پر تنقید. انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہوتی ہے نا، وہ تعریف، میری تعریف کرو. اور جو چیز انسان کو سب سے بری لگتی ہے نا وہ تنقید ہے، اپنے خلاف تنقید۔ انبیاء چونکہ صحیح اور غلط کا فرق بتانے آتے ہیں، لہذا قومیں غلط کام کریں تو نبی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو نبی تنقید کرتے تھے، اس سے قومیں دشمن ہوتی تھی۔ اگر نبی لوگوں کی دل پسند تقریریں کرتے تو لوگ ان کو ہیروز بنا کر پوچھتے۔ آج بھی یہی بات ہے، حق والا جب لوگوں سے وہ بات کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور معاشرے میں وہ چیز اب ایکسیپٹیبل نہیں، تو لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگتے، اور جو تسلیاں جھوٹی لوریاں دیں لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے۔ جیسے آپ اور میں اکثر بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں نا کہ بڑے کی بات اور آملے کے اچار کا پتہ بڑھاپے میں جا کے چلتا ہے۔ بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس طرح قوموں کو نبیوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ کرنی تھی۔ اب دل میں جب درد تھا، سچائی تھی، اس قوم کو بچانا ہے، تو پھر کوئی لفظ تھوڑی سکھاتا ہے، وہ پھر یاد آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کے کمپریہنسو اسپیچ، انگلش میں سمجھ آ جاتی ہے بات، اردو میں مشکل ہے، اور اس کو تھوڑا سا کھول دوں، تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کرنا، چھوٹا لفظ بات بڑی۔ اس کی مثالیں ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خود فرمایا ہوتی تو بھی جوامع الکلم، جوامع الکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختصر ترین کلمے ہیں جو معنوی لحاظ سے بڑی وسعت رکھتے ہیں، کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ معنی پیش کرنے میں۔ سرور عالم آپ اپنی مثال تھے، اور اسے خصوصی عطیات رب میں شمار کیا گیا۔ یہاں چند مثالیں دیکھیں، آپ مثالیں دیکھیں، پھر آپ اپنے اندر بھی دیکھیے گا کہ آپ لمبے لمبے جملے بولتے ہیں، بڑی بڑی بات کہتے ہیں، پھر بات کسی کو سمجھ آتی ہے، یا آپ بھی چھوٹے سے جملے بولتے ہیں، خاص طور پر ٹیکسٹ لکھنے میں۔ جب آپ میسیجز کرتے ہیں، بعض لوگ چار لائنوں میں ایک بات بھی پوری نہیں سمجھا پاتے، اور بعض صرف چار لفظ لکھتے ہیں تو اگلے بندے کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، میں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، پورا جملہ بھی نہیں انہوں نے لکھا، کوئسچن مارک ہی بہت ہے۔ تو یہ خوبی ہوتی ہے۔ شارٹ ہینڈ اسپیچ آپ نے نام سنا ہوگا، جب لوگ ہر چیز ٹائپ کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا فن تھا، تھوڑے لفظوں میں چیز کو لکھنا، یہ برکت ہوتی ہے اس میں۔ اب دیکھیے کتنے خوبصورت جملے ہیں آپ کے۔ ایک حدیث صرف چار لفظوں میں، المرء ما منح، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اس جملے کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ آپ ذرا بعد میں جا کے لفظ گنیے گا، الف دال میم یا کاف، الف ہا شین را، الف سین یا کاف بڑی یا سین، الف تا ہا، ہا واو گا اف الف، یعنی یہ میں نے کوئی 15-6-19 لفظ بولے ہیں، ابھی آدھا جملہ ہوا ہے۔ اس کے برعکس الف لام میم را حمزہ میم عین میم نون الف خابا، 12 لفظوں میں پوری بات ہوگی، المرء ما نحا۔ اس کے اپوزٹ میرا خیال ہے 30 سے زیادہ لفظ ہیں، یہ ہے ٹرانسلیشن کرنے میں کتنا لمبا بن جاتا ہے جملہ۔ پھر اسلم تسلم، تم اسلام اختیار کرو تو سلامتی پاؤ گے، یہ جملہ آپ نے کس کو لکھا تھا، آپ کو یاد ہے یا کبھی سنا؟ جب غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، نجاشی کو لکھا تھا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا، اعمال نیتوں پر منحصر ہیں، اس کی تفصیل میں پوری پوری اتنی موٹی موٹی بکس ہیں اس ایک حدیث کی شرح میں۔ لیس للعامل من عملہ الا ما نواہ یا ما نوات، کسی عمل کرنے والے کو اپنے عمل سے سوائے اس کے کچھ نہیں ملتا مگر جو اس نے نیت کی ہو۔ نوات کہتے ہیں نیت کو، گٹھلی، یعنی جو نیت ہوتی ہے وہی اجر ملے گا۔ پھر الولد للفراش والآخر الحجر، بیٹا اس کا جس کے گھر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر، یہ حدیث ہے جو آپ کو معنی سے سمجھ آئی گئی ہے۔ الحرب خدا، جنگ چالوں سے یعنی دھوکے سے بھری بھی ہوتی ہے یا اسے لڑی ہوتی ہے، جنگ چالوں سے لڑی جاتی ہے۔ لیس الخبر کل معائنہ، فارسی کا جملہ شنید کے بوت مانے دیدہ، اردو میں کیا ہے؟ لیس نہیں الخبر خبر کل معائنہ، دیکھنے کے مطابق، یعنی خبر کوئی سنے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اس کو دیکھیں، مشاہدہ کرنا دیکھی ہوئی چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں نا دیکھ کے پتہ چلتا ہے، ویسے اگر کوئی آپ کو خبر دے کہ پانی گرم آ رہا ہے بہت زیادہ شاور میں تو یہ خبر تھی، لیکن جب وہ گرم پانی کھولا اور آپ اس کے نیچے کھڑے ہو گئے ایک دم تو چیخیں نکلیں گی نا، تو یہ مشاہدہ ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے دور سے سن تو لیا تھا کہ میرے پیچھے سے قوم شرک میں آ گئی ہے، غصہ تو آیا، لیکن جب جا کے شرک کرتے دیکھا تو موسیٰ نے تختیاں پھینک دی۔ तो देख कर जो गुस्सा आता है गलत चीज को सुनकर नहीं आता। फिर अल मजालिस बिल अमाना, मजालिस के लिए अमानत यानी राजदारी लाजिम है, यानी अगर आप किसी मजलिस में बैठे हैं वहां कोई बात हुई तो उसको बाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राज होती है। फिर तरकु शर्री सदका, बुराई से बाज आना भी सदका है यानी नेकी है। सैयदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार वो है जो इनकी खिदमत करें। हम कहते हैं लीडर कौन होते हैं जो रोक डालें, गुस्सा करें, अकड़ें जरा, नहीं अल्लाह कह रहे हैं सरदार वो बनता है जो खादिम, और जो खिदमत करता है वो सरदार बन ही जाता है। सच्ची जो बात है, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत पाने वाले से हसद किया जाता है। अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, हुस्ने गुफ्तार भी एक सदका यानी नेकी है। मल्ला यरहम ला युरहम, जो मखलूक पर यानी इंसानों पर रहम नहीं करता इस पर अल्लाह ताला की तरफ से रहम ना किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं चार चार लफ्ज़ हैं लेकिन पूरे पूरे मानी है उसमें। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि इरशादात रिसालत माँ ब लिहाज अल्फाज ब लिहाज असलूब ब लिहाज रूह। अब ये मुश्किल लफ्ज़ है, मानी क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लम के जो इरशादात हैं वो हर लिहाज से पहचाने जाते हैं। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आप हदीस पढ़ते हैं। कुरान की आयत और हदीस की अरबी में जमीन आसमान का फर्क होता है, हालांकि वो अल्लाह का कलाम है, ये नबी की बात है। और नबी की हदीस और आज के अरब लोग, जमीन आसमान का फर्क है। आपका मेरा ख्याल है कि अगर हम अरबी बोलते तो हमें नबी सल्लम की सारी हदीसें समझ आ जाती, कोई नहीं आती, बहुत फर्क है अरबी जुबान में। अहदीस और सीरत के रिकॉर्ड में नबी सल्लम के जो अज्जाए कलाम है वो मोतियों की सी मानी रखते हैं। थोड़े अल्फाज इनका खुशैन घटाओ, इसमें मामानवी गहराई दिल पर असर करने वाली रूह इखलास कलाम नबी के इम्तियाजात में से मुनासिब होगा कि दो तीन पारा हाय फसाहा जहाँ बयान किए जाएं। यानी अल्लाह के नबी के जो खुतबे होते थे ना, जो दर्स आप देते थे, अब आप और मैं कहीं जाते हैं कोई दर्स देते हैं तो हम लिख लेते हैं ना कि चले भाई मस्जिद में आए हैं, कोई मौलवी साहब थे उन्होंने दर्स दिया तो लिखें। अल्लाह के नबी के कुछ खुतबे लिखे हुए हैं, उसमें से एक आपके सामने है। अब आप जरा नोट कीजिएगा, आपको कहीं दर्स देने के लिए बुलाया गया, आप क्या बोलेंगे? अल्लाह के नबी का ये सैंपल मौजूद है। क्या कहा आपने? मैं तुमको अल्लाह से डरते रहने की वसीयत करता हूँ, निज़ाम इज्तमाई के लिए समा इताअत की ताकीद करता हूँ, ख्वाहिशें चलाने के लिए कोई हबशी गुलाम ही बरसरे क़यादत क्यों ना, यानी तुम्हारे सर पे कोई काले रंग का हबशी ही क्यों ना सरदार बना दिया जाए, उसकी बात मानो। क्योंकि तुम में से जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो बहुत से इख्तलाफात से दो चार होंगे, बस ऐसे हालात में तुम पर लाजिम है कि मेरे तरीके और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को इख्तियार करो, इसको मजबूती से थामो, इसे दाढ़ों से पकड़े रखो। दाढ़ें क्या होती हैं? ये साइड नवाज। खबरदार दीन में नए नए शगुफे छोड़ने से परहेज करना, क्योंकि हर नया शगुफा बिदत है और हर बिदत गुमराही है। बात खत्म, खुतबा पूरा हो गया। अच्छा, आज आप कभी अरबी का खुतबा सुने, कभी हरम में जाएं और कोशिश किया करें सुने। ये ऑनलाइन पे भी आता है, नेट से भी आप ढूंढ सकते हैं। हर जुमे का खुतबा मस्जिद हरम से भी आता है, मस्जिद नबी से भी आता है। इतना आसान होता है, अगर आपको कुरान समझ आता है ना तो आधे से ज्यादा क्या 80% खुतबा होती कुरान की आयतें हैं, और एक आयत से दूसरी को जोड़ने के बीच में जो अरबी बोलते हैं वो आपको खुद ही समझ आ सकती है कम लफ्जों में। और हमारी उर्दू की स्पीच माशाल्लाह कितनी लंबी होती है, दो दो घंटे की स्पीच होती है हमारे एक एक आम स्पीकर की। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देखें, इतनी लंबी स्पीच अरब के कल्चर में नहीं थी, और नबी सल्लम का तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज था। फिर इसी तरह उमर बिन अफसा ने नबी सल्लम से कुछ बातें की जिनके बहुत ही मुख्तसर मगर जामे जवाब आपने दिए। एक छोटा सा मुकालमा है। इस दावत तहरीक के काम में इब्तदा कौन कौन आपके साथ था? किसी ने सवाल आपसे किया कि इस दावत तहरीक के काम में शुरू में कौन कौन आपके साथ था? एक मर्द आजाद। आप कब जवाब सुनिए? आपने कहा एक मर्द आजाद और एक गुलाम। कौन आजाद मर्द? कौन है? अबू बकर। और गुलाम कौन है? जैद बिन हारसा। खत्म, जवाब मिल गया। इस्लाम की इखलाकी हकीकत क्या है? सवाल, जवाब पाकीजा गुफ्तार और भूखों को खाना खिलाना। ये इखलाक, ये एथिक, ये मॉरल अल्लाह आपसे चाहता है। ईमान का जौहर क्या है? सबर और सहावत। कैसा इस्लाम अफजल यानी मेयारी है? जवाब इस शख्स का जिसकी जुबान और जिसके हाथ की ज्यादतियों से मुसलमान महफूज रहे। सवाल कैसा ईमान अफजल और मेयारी है? जवाब जिसके साथ पसंदीदा अखलाक पाया जाए। कैसी नमाज अफजल है? जिसमें देर तक आजजी से क्याम किया जाए। इस पे तो हम अमल कर सकते हैं ना, क्याम लंबा कर दें, ऐसे हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े हैं जैसे मुजरिम कटहरे में खड़ा हुआ है, आपकी शक्ल पे ऐसे रोना हो कि अल्लाह को आप पे रहम आ जाए। फिर सवाल किया गया कैसी हिजरत अफजल यानी मेयारी है? ऐसी कि तुम इन चीजों से किनारा कश हो जाओ जो तुम्हारे परवरदिगार को नापसंद है। कैसा जिहाद अफजल यानी मेयारी है इस शख्स का जिसका घोड़ा भी मैदान में मारा जाए और खुद भी शहादत पा जाए। कौन सी घड़ी इबादत के लिए सबसे बढ़कर है? रात का पिछला पहर। एक बार पूछा गया कि इंसानों को दोजख तक पहुंचाने की सबसे बड़ी वजूहात क्या है, तो फरमाया अल-फम वल-फरज, मुंह और शर्मगा। मुंह से क्या बोलते हैं? झूठ, गलत बातें करते हैं। कलाम और ताम दोनों मुंह से होते हैं ना। दहन से इशारा है मुंह की तरफ और शर्मगा से इशारा है जिंसी दाहियात यानी सेक्सुअल थिंग्स की तरफ। यानी ज्यादा बोलना, कलाम का फासद होना, रोजी का नापाक होना और जिंसी जज्बात का बेराह रो हो जाना इंसान की आखरत को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला है। बहुत सारे झगड़े और तसादम और ज्यादतियां और जुल्म भी इन्हीं खराबियों का नतीजा होते हैं। अब आप देखिए कितने लफ्जों की हदीस है, अल-फम वल-फरज, ये दो चीजें बंदे को तबाह करती हैं। हजरत अली ने एक बार सवाल किया कि आप अपने मसलक की हिफाजत करें। आपने मुख्तसरन जिस फसीह अंदाज से जवाब दिया और इस जवाब में अपने तर्ज फिक्र, अपने किरदार और अपनी रूहानियत की जामे तस्वीर खींच दी, वो बजाय खुद इंसानी कलाम की तारीख में एक एजाज है। अब आप देखिए कि ये रिवायत है जिसको अगर आप देखें कि आपसे पूछा गया कि दीन का खुलासा तो बताएं क्या होता है। अब ये जो चंद छोटे छोटे जुमले हैं ना, असल में आपको इस पे पूरा दीन ही मिल जाएगा। आपने क्या फरमाया? अल मारिफतु रासु माली, मारफत मेरा सरमाया है। रास कहते हैं कैपिटल को, माली माल यानी जिससे कारोबार शुरू किया जाता है, यानी अल्लाह का कुर पाना, अल्लाह को पहचान लेना, ये मेरे लिए बुनियादी चीज है। वल अक्लु असलु दीनी, अकल मेरे दीन की असल है। वल हुब्बु असासी, और मोहब्बत मेरी बुनियाद है। वह शौक मरकबी, शौक मेरी सवारी है। शौक लग जाए ना तो आप उस सवारी पे बैठ के आई जाते हैं चाहे पैदल चल के आ रहे हैं। वह जिक्रुल्लाह ही अनीसी, और अल्लाह का जिक्र मेरा अनीस यानी मेरा दोस्त, मेरा मुअन्नस है। वल शुक्कत व सकतु कंजी, एतमाद मेरा खजाना है। वल हुस्न रफीकी, हुसन मेरा रफीक है यानी मैं दुखी रहता हूँ तो मुझे मजा आता है, दर्द है मेरे अंदर। वल इल्म सलाही, और इल्म मेरा हथियार है। वल सबरु रिदाई, और सबर मेरी चादर है। वह रिदाओ गनीमती, और अल्लाह की रजा मेरी गनीमत है यानी मैं अल्लाह पे राजी रहता हूँ। वल एजजु फखरी, और आजजी मेरा फखर है यानी आजजी मेरे लिए वजह एजाज है। और वल जुहदु हिरफती, और जोहद मेरा पेशा है। वल यकीन कूती, दोनों लफ्ज आ सकते, यकीन मेरी गजा है, कूत लिख लें इसको, यकीन मेरी गजा है। वह सिद्क शफी, और सिद्क मेरा सिफारशी है यानी कल मेरी सिफारिश करेगा। वह तातु हसबी, और एतात मेरा अंदोख्ता यानी मुझे काफी होगा, आज अगर मैं अल्लाह ताला की बात मानता हूँ तो ये मुझे काफी होगी। हसबी मुझे रोकने वाला यानी जिससे मैं फिर गलत कामों से रुक जाता हूँ। वल जिहाद खुलकी, और जिहाद मेरा किरदार है। वकुर्रत आईनी फिस सलाती, और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब आप सोचें कि ये लफ्ज हैं जो अल्लाह के नबी ने कहे हैं? नहीं, ये आप खुद हैं। अगर इस एक रिवायत को जिस दर्जे की भी ये है आप जमा करें ना, तो ये था करेक्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम। जरा आप और मैं इन चीजों पर गौर तो करें, क्या हम इन सारी चीजों का अपने अंदर लेते हैं? मार्फत है। अब एक एक चीज के ऊपर जरा चेक्स लगाइए, क्या मुझे अल्लाह की मार्फत है? क्या अकल मेरे दीन की असल है? क्या मुझे अल्लाह से मोहब्बत है? क्या शौक है? यानी एक एक चीज पे खुद से पूछिए, और अगर ये सब है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक रास्ते पे हैं। क्या नमाज मेरी आंखों की ठंडक है? डिले तो नहीं करती? हुस्न तमसील की बेशुमार जरी मिसालें आपके कलाम में महफूज हैं, जिनकी मदद से बड़े बड़े हकायक आपने बदुओं के जहन नशीन करा दिए। इनमें से एक लीजिए, यानी आप इतनी आसान बात करते थे कि बदू जो कम पढ़े लिखे लोग थे ना, उनको भी आपकी बात समझ आ जाती थी। एक एग्जाम्पल इन्होंने इधर लिखी है, मुझे खुदा ने हिदायत और इल्म का जो सरमाया देकर उठाया है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे जमीन पर मूसलाधार बारिश हो, इमेजिन कीजिएगा। फिर इस जमीन का जो टुकड़ा बहुत जरखेज है, इसने पानी को पूरी तरह जज्ब किया और मुरझाया हुआ सब्जा इससे तरोताजा हो गया और नई बूटियां कसरत से उगाई। फिर जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी था जिसने पानी को अंदर जमा रखा, और अल्लाह ने इसे लोगों के लिए फायदे वाला बना दिया। उन्होंने इसको पिया पिलाया और खेतियों को इससे सैराब किया। फिर ये पानी और एक और कते पर बरसा, यानी पहली जमीन जिस पर बरसा वहां से तो बड़ी खैर निकली, अब यही बादल आगे गया, एक और जमीन के टुकड़े पे बरसा जो चटियल मैदान था, और ना इसने पानी जमा करके रखा, खुश्क था अंदर तो पानी जाना ही नहीं था, ना जज्ब करके रुईदगी यानी सब्जा दिखाया। बस इसमें एक मिसाल तीन लोगों के, जिन्होंने इल्मे दीन में समझ बूझ पैदा की, और जो कुछ हिदायत मुझे देख कर अल्लाह ताला ने उठाया है, इससे इन्हें फायदा पहुंचा। दुआ करें अल्लाह हम सबको इसमें करे। इस वक्त आप भी जमीन के टुकड़े ही हैं, कुछ को समझ आ रहा है, कुछ को कोई नहीं आ रहा, कुछ के अंदर उतर रहा है, और वो इंशाल्लाह दूसरों को भी ये देंगे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बंजर हैं। मिसाल दी कि हर बंदे को फायदा नहीं होता बारिश से, लेकिन जिन्होंने सीखा उन्होंने खुद इल्म हासिल किया, दूसरों को सिखाया। दूसरी मिसाल इन लोगों की, जिन्होंने इस दावत को सुनकर सर ही नहीं उठाया और ना अल्लाह की इस हिदायत को कबूल किया जो मेरे जरिए पहुंची। तो उम्मत मुस्लिमा भी तो आज इन दो ग्रोहों में ही है ना, सारे आप जैसे इल्म के शौकीन थोड़ी हैं, या सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी हदीस पढ़ने के शौकीन तो नहीं है ना। लोग नात शौक से पढ़ते हैं, नबी की बात शौक से नहीं पढ़ते। नात सुन के मजा आता है कि हदीस सुन के? हदीसें तो बोरिंग होती हैं, नात में तो मजा आता है, लज्जत आती है। चले आप जितने लोगों को जानते हैं, मोस्टली लोगों को नाते सुनते हुए आपने देखा है रस्तों में या हदीसें सुनते हुए? फरमाइशें लोग करते हैं, नात चला दें या हदीस चला दें, पब्लिक का टेस्ट क्या है? जरा गूगल पे या आप यूट्यूब पे एक लफ्ज लिखिए नात, तो उसके रिजल्ट ज्यादा हैं, या हदीस लिख के देखिए उसके रिजल्ट ज्यादा हैं, टेस्ट सबको पता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वही सुनेगा जिसने उसको आगे लेकर जाना होता है। आपके अंदाजे गुफ्तगू का कोई अनुमान बांधा जा सकता है तो कुरान के इस जुमले से, कुलुल लिन्नास हुस्ना, लोगों से हुस्ने तकल्लुम से खिताब करो। आपका हुस्ने कलाम सादगी की शान लिए हुए था, बनावटी कलाम से आपको बोध था। अच्छा, मुझे पता कि ये बातें आपको बोझल लग रही हैं, अभी स्टोरीज नहीं शुरू हुई ना, अभी तो किरदार है नबी का, लेकिन आप ये देखें कि इसमें हमारा अपना मुहासबा कितना है। क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं? खुद से पूछिए। देखिए हम बोलते हैं ना, मिन मिन करते हैं बाज़ दफ़ा, बाज़ दफ़ा 4 दफ़ा एक जुमला बोलते हैं। क्या दिन में कई बार आपको ये एहसास नहीं होता कि मैं अपनी बात नहीं समझा सकी, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, शौहर को तो मैं आज तक अपनी बात समझा ही नहीं सकी? ये हमारा झोला है। अगर कहीं भी आप बात करते हैं और उस बंदे को आपकी बात समझ नहीं आती, मान लीजिए कहीं ना कहीं कमी आपकी है। कुछ लोग हैं वो 4 लफ्ज़ बोलेंगे तो उनकी बात लोग मानते हैं। मिसाल देती हूँ कि अगर आपने किसी से कहना है कोई चीज़ लेकर आइए, घर से कुछ लेना है, देना है, करना है, तो वो एक दफ़ा कहेगा ले आएंगे। आप हो सकते हैं शौहर को 4 दफ़ा फ़ोन पे भी बताएं, घर से निकलते हुए भी कहिए ले आइएगा, शाम को फिर खाली हाथ आते हैं। फर्क किस बात का है? तासीर, मुअसर। कुरान में आता है कौलम बलीगा, दिल में उतरने लिए बात करो। तो आज से एक दुआ करें अपने लिए भी, मैं भी अपने लिए करती हूँ, हम एक दूसरे के लिए भी करते हैं, कि अल्लाह कौले बलीग की तौफीक दे। मैं एक दफ़ा किसी से बात करूँ ना, अगले को समझ आ जाए, लेकिन उसके लिए फिर कम बोलना पड़ता है, कम कहना पड़ता है। जितनी कोई चीज़ कम होती है ना, नायाब होती है। आप मानते हैं ना, डायमंड महंगा है ना तो कम होगा, जरकोन आम पड़ा हुआ है, कांच तो रुल रहा है, ऐसी है ना। आप अपनी कीमत खुद बनाएं। ये मुझे तो ऐसा लगता है सेल्फ ग्रूमिंग की बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए दुनिया के सबसे कामयाब इंसान की मिसाल है। वो कामयाब हो गए तो मैं और आप भी हो सकते हैं। तो कलाम करें तो हुस्ना, खूबसूरत। आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुने, अपनी बातें सुने, ये कोई चुपती हुई बातें तो नहीं, तानों के तीर तो नहीं दिए, टिचकर तो नहीं लगाई, तो फिर कोई इसको सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो मुझे कहाँ अच्छा लगेगा? निकाल दीजिए। फिर आपका उसने कलाम सादगी की शान लिए हुए था, बनावटी कलाम से आपको बोध था, बनावटी बातें नहीं करते थे आप। आपने फरमाया अबदुकुम मिन्नी यौमुल क़ियामती अस्सरसारून अलमुतशद्दिकून अलमुतफीहुकून, तुम में से क़ियामत के रोज़ वो लोग मुझसे इंतहाई दूरी पर होंगे जो बड़े बोल बोलने वाले, खुद को बहुत बड़ा बड़ा कि हम वो हमारा क्या पिदरम सुल्तान भूत, मेरा बाप तो बादशाह था। ये सूरत बातूनी सरसार और घुमंड जतलाने वाले मुतफी हकून। अब अदुकुम मिन्नी यौमुल क़ियामती अल सरसार, उन सरसार कहते हैं बातूनी को, टॉकेटिव। आज कल्चर क्या है, बस मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, और मुतशद्दकून और मुतफी हकून, घुमंड जतलाने, फ़ख्र करने, ये लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते, शोखियाँ बिगाड़ने वाले लोग। इसी तरह आपको संजीदगी और पाकिजगी की हदूद से निकल कर फुहश के दायरे में दाखिल होने वाली गुफ्तगू सख्त नापसंद थी। चलिए इस जुमले में जरा अपनी दोस्तों के साथ अपने जुमले तो नोट करें। बेतकल्लफ दोस्तों में बैठकर शौहरों पर क्या कमेंट्स होते हैं, दुल्हन के साथ क्या बातें होती हैं, दूल्हा के साथ क्या छेड़खानियां होती हैं, देवर भाभियों के मजाक क्या हैं, दरानी जिठानी आपस में बैठकर क्या बातें करती हैं, इसी सब में देख लीजिए फुहश जहां भी आएगा ना। और एक दोस्त अपनी दोस्त के साथ क्या बातें करती हैं, और फिल्म देखने के बाद क्या बातें जेरे लब दोहराई जाती हैं। खजूर के चमन ज़ार तकल्लुम में हमेशा तबस्सुम की शबनुल मानी पाई जाती थी, यानी बोलते थे तो ऐसा लगता था शबनम गिर रही है। ओस सबसे बढ़कर खंदा रवि से आप ही का चेहरा रास्ता रहता था, यानी सबसे ज्यादा आप ही मुस्कुराते थे, बावजूद इसके कि जिम्मेदारियों और मुश्किलात और मसाइब और हर आन की परेशानियों के कांटे आपके रास्ते में दरपेश थे। हम हो तो हमारे तो माथे से तेवरी ना जाए। अच्छा ये भी एक स्टाइल होता है। मैं आपको एक छोटा सा मुश्किल असाइनमेंट दूं, सेल्फी से अपनी आम वक्त पे तस्वीरें लें जब आप आम मूड में बैठे होते हैं। अब वो तो आप केयरफुल हो जाएंगे ना, किसी से कहें कि आम जब आप बैठे हुए ना, जैसे कहीं भी बैठे खाना पका रहे हैं या आप अपने ख्यालों में गुम है, किसी से कहें जरा आपकी पिक्चर लेकर आपको दिखाएं। देखिए ये बहुत एक निग्लेक्टेड थिंग है हमारी कि हम आम तौर पे अपने फेस एक्शन से ही शो कर देते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, छिछोरा है अपन कभी कुछ। आप नोट करें बाज लोगों की ना यहाँ तेवरी पड़ चुकी थी, ऐसे अजीब सी यहाँ लाइनें पड़ चुकी होती है बाज की आंखों में ना, इधर ऐसे वो जैसे लाइनें नहीं पड़ती, यूं होती हैं, यूं करके देखना। ये सब नाकाबले पसंदीदा चीजें। फ्राख चेहरा, जो सोचते हैं ना उनके चेहरे को देखें तो आपको ऐसे लगता है अलामा इकबाल का कोई सदका जारी है। और कुछ लोग बीमार हैं, मिसाल है अल्लाह ताला सबको सेहत दे, मैं मानती हूँ लोग बीमार होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एकदम कराहत आ जाती है, तकलीफ, ऐसे लगता है इनको दर्द हो रही है इस वक्त भी। तो अपने फीचर्स ठीक करें। देखिए हंसता बच्चा सबका, रोता बच्चा माँ का। तो आज से आप अपने घर में जो भी आपसे बेतकल्लुफ है उसे कहें कि मेरे फेस एक्शंस को ठीक करो। कई लोग उनके तेवरियां चढ़ी तो आप जाके ना उनकी यूं करते हैं कि इसको सीधा करें। हंसे आप तो अच्छे लग रहे हैं ना, तो दुखी होते हैं तो अच्छे नहीं लगते। यकीन करें कि चेहरे के ऊपर एक सख्ती आ जाती है। बाद लोगों के चेहरे करख्त होते हैं, बस गुस्से वाले, बाद लोग शक्की, और एक एक चीज चेहरे पे आती है, पता नहीं आपको फेस रीडिंग आती है कि नहीं। लेकिन इंसान खामोशी से जायजा लेता रहता है। हम अपना तो ले नहीं सकते, शीशा तो हमारे हाथ में नहीं होता, तो दूसरों का तो लेते हैं ना। तो ये भी अपने लिए एक करने का काम है, अपने आप को फ्रेश दिखाएं। अंदर गम टूटे पड़े हैं, चेहरे पे कोई उसके असरात ना हो, ऐसे लगे आप। अंदर बीमार है, चेहरे पे रिलैक्स्ड। अच्छा कई लोगों की शक्ल देख के पता चल जाता है बस आज गया काम, कोई गड़बड़ हुई हुई है। आप खुद बताएं कि आप अपने एक्सप्रेशन छुपा सकती हैं? बहुत कम लोग छुपा सकते हैं, बहुत कम लोग हैं कि अंदर से दुखी होते हैं अगले को पता ही नहीं चलता। अंदर से बीमार है वो, आंख भी निकलती है तो जरा सा मुंह बचिए कर लेते हैं कि कोई हमारी आह ना सुन ले। और ये बहुत बड़ा गुण है, कामयाब लोगों की जिंदगी का ये राज है कि वो अपने दिल के जज्बे छुपाते हैं। हमसे खुशी में भी नहीं काबू होता और हम गम में भी नहीं काबू पाते, नफरत भी नहीं छुपती, मोहब्बत तो बिल्कुल ही नहीं छुपती हमसे। आपने प्रेशर कुकर देखा, जब तक उसकी विसल ना खोलें पता भी नहीं चलता अंदर कितना प्रेशर है। प्रेशर कुकर बने, प्रेशर बर्दाश्त करें। देखिए प्रेशर कुकर में चीज जल्दी क्यों गलती है, हंडिया में जल्दी नहीं गलती, क्यों? कि वो बाहर लीक हो जाता है। प्रेशर कुकर अपने अंदर रखता है, कार्बन प्रेशर में जाता है तो डायमंड बनता है, आपको ये पता है बात? ये कोयला जिसको आप कहते हैं ना यही कार्बन है, लेकिन वो कई साल अंडर प्रेशर रहता है ना, खूब प्रेशर में जाता है तो वो डायमंड बनता है। डायमंड जब निकलता है ना पहाड़ से तो काला स्याह होता है, कोई ले भी ना, ये बाद में उसको ऊपर से छांट छूट के तो उसको चमकाते हैं, किसी जौहरी के हाथ लगते हैं। तो प्रेशर कुकर बने फिर आप दूसरों को गलाएंगे, वरना वो भी जलते रहेंगे। ये हम ट्रेंस क्यों रहते हैं, स्ट्रेस्ड क्यों होते हैं, परेशान क्यों हैं? हम अपना सब लीक करते हैं। जैसे वो आपने देखा एक गैसी गुब्बारा होता था, गैसी गुब्बारा ना उसमें गैस आप भरते हैं वो ऊपर उड़ता है, राइट? और अगर एक सुराख करे तो गिरेगा। अपने अंदर रखें चीजें, बर्दाश्त करें। चलिए एक छोटी सी आपको अब इस पे एक्टिविटी और भी दे दूं, क्या आपको लगता है कि आप अपनी बात छुपा सकते हैं? मतलब कोई बात है दिल में करनी है और आपके सामने वही बैठा है जिससे आपकी हर बात होती है, क्या आप उसको बेचैन होकर कहेंगे एक बात कर दूं, बतानी है, करनी है जरा जल्दी, और मियाँ साहब को जॉब से ही परेशान कर, जल्दी आए, हम तो वैसे ही कर दें, अब तो कोई वो मुसब्बर ही नहीं रहा, अब तो हम वही कर देंगे, आज ये हो गया। पाकिस्तान क्यों जाते हैं हम भले 1 साल बाद? हर रोज तो 10 दफा मैसेज पास होते हैं, अब ये हो गया, वो हो गया, अब ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या करने जाके पाकिस्तान में? बस गले ही मिलते हैं ना रिश्तेदारों से, अपनों से। अंदर रखे आपको, अपने पर इतना मानो कि मैंने बात जो नहीं करनी मैंने नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास हो तो आपके मुंह से बात फिसलती है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा वो स्ट्रांग करने के लिए कहें अभी नहीं करनी, आधा घंटे बाद करूंगी, देखती हूँ करनी है नहीं करनी, चलो छोड़ो। और खास तौर पे वो बात जिससे अगले की हमदर्दियां ही लेनी है बाद में, आपने दुखी महसूस अगले ने कहना लो ये गई, तो पहाड़ की तरह बने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग करेक्टर। ये हम छोटी छोटी बातों पे चूंकि फिसलते ना, इसीलिए फिर हमारी जिंदगी में बस ये मसले ही मसले हैं। ये चंद बातें थी नबी सल्लम के तर्ज तकल्लुम पे। चलिए, जजाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।